السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدو ناس دو ہزار انیس اس وقت ہم لوگ بغداد شریف میں ہیں اور حضور اشرف الفقہا جو ہمارے ہیں حضرت سے صرف نصیحت دانا کلمات سنیں گے. پروگرام کا آغاز اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت سے کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک کا جن خبر کو اللہ کے سلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر علی 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 سرکار حضور مفتی اعظم ہی ملے رحمت و رضوان کا مسجد زمانہ کلام اس کے دو تین سے استعمال کرنا لیں.
تو سنور کالت ہے عالم تیرا پرگانا او ماہ نبوت ہے
صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.
على حضرت عزیز البرکت امام احمد رضا علیہ الرحمت حضور پیر پیرا میر میرا صاحبیرا سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں نبوی میں ادبی فصل جتولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہاتما کے بعد. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم ولایت کے باغ کا گلشن کا ایک مہکتا ہوا پھول اگر تصور کریں تو اس پھول کے بارے میں وہ تمام باتیں جو دنیا کا پھول پھولتا ہے اس کے لیے پلانٹ ہوتا ہے, زمین ہوتی ہے, اس کو پانی سے سینچا جاتا ہے اور وہ پھول کسی کا ہوتا ہے جو اسے چنتا ہے اور اس پھول میں مہک ہوتی ہے. تو اگر وہ اسے پاک کی ذات کو ہم ولایت کا پھول مانیں تو اب سوال یہ ہے اس پھول کو کس پانی سے سینچا گیا, یہ پلانٹ کون ہے جس پلانٹ میں یہ پھول کھلا اور کس گارڈن میں کس کیاری میں یہ پلانٹ بویا گیا تھا اور یہ پھول کس کا تھا اور اس میں مہک کہاں سے آئی. اس کو ذہن میں رکھ کر پھر اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے. فرماتے ہیں نبوی میں, میں کہتے ہیں رین بارش سے, یہ جو غوث پاک کا پھول کھلا ہے ان کی بات باغ ولایت میں ایک پھول کی طرح ہے, اس کو دنیا کے پانی میں نہیں سوچا ہے, نبوی میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش میں یہ سوچا گیا. غوث پاک کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پانی پر تازہ کر کے پھول کی طلب کھلایا ہے. پانی تو سمجھ میں آ گیا کہ فرماتے ہیں علوی فصل, یہ جو پودا اور پلانٹ تھا یہ دنیا کے کانٹے دار پھولوں کا پلانٹ نہیں تھا بلکہ اس پلانٹ کا نام ہے جہاں سے یہ پھول کھلا ہے وہ ذات علی مرتضیٰ. نبوی فصل, نبوی نوح علوی فصل. اب یہ کس کیاری میں سے یہ نکلا ہے تو فرماتے ہیں بتولی, بتولی گلشن. یہ گلشن جو تھا آتما زہرا کا ستم پاک تھا اور فرماتے ہیں یہ پھول کس کا تھا, حسنی پھول. امام حسن سے ان کا نسب چلتا ہے غوث پاک کا, ان کے والد گرامی حسنی تھے اور والدہ جو تھی حسینی تھی. حسن کی اولاد سے ان کے والد اور امام حسین کی اولاد سے ان کی والدہ. تو فرماتے ہیں یہ پھول جو بغداد میں کھلا ہے یہ حسنی پھول ہے اور اس میں مہک آئی ہے حسینی مہک. تب یہ پھول جس کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں یہ باغ ولایت میں ایک ایسا پھول رب نے کھلایا ہے جس میں مصطفیٰ کی رحمت کا پانی اور علی مرتضیٰ کا پلان اور فاطمہ زہرا کی کا گلشن, حسن امام حسن کا پھول, امام حسین کی رنگت ऐसे उन्होंने हुसैन की महत्व इसमें है जो आज सारे आलम को महका रहा है। यहाँ पर जो हम जिस जमीन पर बैठे हैं ये तरीकत और शरीयत की जमीन है। यहाँ तरीकत वाले भी हैं शरीयत वाले भी। आजकल के तीन लोग ये कहते हैं शरीयत अलग है तरीकत अलग है। ये बहुत बड़ी गुमराही और धोखा है। शरीयत अलग और तरीकत अलग नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक पीर साहब निकले थे जो यही नारा लोगों को दे रहे थे कि भाई शरीयत तो मौलाना लोगों की है और तरीकत हम सूफियों की है। शरीयत अलग है तरीकत अलग है। एक साहब ने आकर हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा हुज़ूर ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है। जलाल में फरमाते हैं मियां सुनो शरीयत बाल है और तरीकत मन है। ये बीच में जो मन निकलती है फरमाते हैं शरीयत जो है बाल से मिसल है और तरीकत मन से मिसल है। क्या फरमाया दो जुमले में कि जिस कर में बाल होगा उसी कर में मन निकले। अगर बाल नहीं है तो पंघी का बाप पंघा लेकर सुरक्षे रहे ओपन तलाक में मांग निकले। मांग वही आएगी जहाँ बाल है। इतनी अच्छी बात दो जुमले में फरमा दिया शरीयत बाल है और तरीकत मांग है। ये समझा रहे हैं कि पहले शरीयत की जिल्फ पैदा करो शरीयत का बाल पहला पहला पैदा करो और फिर तरीकत उसको देखो मांग निकलेगी। ये है तरीकत और ये है शरीयत। हजरत जुनैद बगदादी ने तसव्वुफ का बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। शरीयत को अलग नहीं किया जा सकता तरीकत को अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ शरीयत है वही तरीकत होगी और जहाँ सही तरीकत है वही शरीयत होगी। पहले आदमी तरीकत शरीयत से सीखता है। हुज़ूर जैसे सारा पैदा इसी वली थे सत्रह पारे के वली बनकर आए थे सारे। लेकिन जीवान से सफर करके बगदाद आए किस लिए शरीयत सीखने के लिए। तरीकत तो माँ के पेट से उनको अल्लाह ने अता करवाई थी लेकिन मदरसे में अपने उस्तादों के तहत बरसों पढ़ पढ़ करके और फिर लोगों को तरीकत का दर्स दिया। वहाँ पर हजरत अबू सईद मखदूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके पीर भी हैं और उस्ताद हैं उनके मदरसे में रहते पास करते थे और मदरसा यही जहाँ आपका मजारे पास है। इसका नाम पहले मदरसा निजामिया था। जब हजरत रहते पास पढ़ करके फारिग हुए तो उस्ताद को अपने शागिर्द पर इतना भरोसा आया कि पूरे मदरसे की तराकती और निजाम सब हुज़ूर गौसे पाक के हवाले कर दिया और अपने गांव में जाकर के फिर वो रहने लगे और वहीं उनका मजार पाक है जो यहाँ से 250 किलोमीटर। हजरत अबू सईद मखदूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु शरीयत वाले भी थे तरीकत वाले थे। वैसे आजम से बड़ी तरीकत और किससे आएगी। लेकिन मदरसे में हमेशा बैठ कर पढ़ाया करते थे पहले शरीयत सीखो कभी गुमराह नहीं हो सकते। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक मरीज था वो आया था तरीकत सीखने के लिए। जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हमको बगला से साथ जाना चलो तुम हमारे साथ। बगला महर होगा अपने ना यहाँ पर इस वक्त पुल वगैरह नहीं बने थे। पुल था तो था एक पुल था। अब तो यहाँ से वहाँ पर देखो तो 12-20 के लड़की नजर आते कहा बगला पर बगला के उस पार जाना है तो पुल से नहीं जा रहे हैं जहाँ पुल नहीं है वहाँ आए। मरीज ने कहा हजूर यहाँ पर पत्ती भी नहीं है, पुल भी नहीं है, बगला के पार कैसे जाएंगे। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, मेरा दामन पकड़ लो और या जुनैद कह करके मेरे साथ कर। उसने दामन पकड़ लिया पीछे से और हजरत जुनैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगला के ऊपर बिस्मिल्लाह करके कदम रखा और फरमाया, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, कदम उठाते जा रहे हैं या अल्लाह और पानी के ऊपर चल। इधर से मरीज या जुनैद कह रहा है वो भी पानी पर चल रहा। शैतान यहाँ बढ़ जाता, शैतान ने दिल में वसवसा डाला, अल्लाह का नाम कितना अच्छा है, जुनैद तो अल्लाह के बंदे हैं और मरीज क्योंकि अल्लाह का नाम ले जो तेरा पीर ले रहा है और ये जुनैद जुनैद बंदे का नाम क्या पुकार रहा है। उसकी समझ में बात आ गई, ऐसी बातें जल्दी समझ में आती है। आगे वाकई जल्दी जो बात आ रही है वो सही है, बोले मैं भी अल्लाह का हूँ, अल्लाह के सबसे मददगार है, ये जुनैद क्या देंगे। उसने कहा, या अल्लाह वक्त भी दे दो। अगर तो जुनैद ने पीछे मुड़ कर के कहा, अगर या जुनैद क्या ये मरता क्या नहीं करता। कहा, या जुनैद, यही पर चलने लगा। अगर तो जुनैद फिर आगे बढ़े, फिर दिल में ख्याल आया, शैतान बोलता है इतना समय ट्राई लो कर लो कर। फिर उसने या जुनैद कहा, ये अंदर भुजे। अगर तो जुनैद ने कहा, या अल्लाह मत कर, या जुनैद कर। उसने फिर या जुनैद कहा, फिर पानी में चलने लगा। तीन मरतबा यही हाल हुआ, अब चौथी मरतबा उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अब तो अंदर ही चला जाऊंगा। इसलिए गनीमत यह है, जान बची और लाखों पाया, खैर से बुद्धि भर के आया, चाहे जुनैद कह करके बाहर आए या यह अल्लाह कहते आए, अब या जुनैद लेकिन हालत उसकी खराब थी, ठंडे के मारे परेशान, मेरे मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, हुजूर मसला समझ में नहीं आया। फरमाया, कौन सा मसला समझ में नहीं आया। कहें, अल्लाह का नाम आप भी ले रहे हैं तो दरिया आपको रास्ता दे रहा है और मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूँ तो दरिया मुझे डुबा रहा है, ये मसला समझ में नहीं आया। नाम है जरा से मैं कहूँ तो परेशानी में मुबतला हो जाऊँ, आप अल्लाह कहूँ तो निजात पाते चले जाऊँ। फरमाते हैं, कौन अभी कुछ जुनैद तक नहीं पहुँचा है, अल्लाह तक पहुँचने का हौसला ले रहा है। पहले अल्लाह की मार्फत बाद में करना, पहले अपने को पहचान, फिर अपने पीर को पहचान, अल्लाह को पहचान लेगा। हदीस में फरमाया गया, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा नफ्सहु, जिसने अपने हाथ से पहले पहचान लिया कि मेरी औकात क्या है तो पीर भी समझ में आएगा, जब पीर को समझ लोगे तो अल्लाह भी समझ में आएगा। ये है शरीयत, शरीयत हाथ में रहती है तो तरीकत का संभल कर चलता है और शरीयत हाथ से टूटी तो वो गया। हमारे मौलाना ने फरमाइश की है, मैं अपनी जिंदगी का एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। जवानी का आलम वैसे बहुत स्मार्ट दिल कहता मैं सही कहता, बस जब मैं चलता था तो लोग देखते रहते थे, काली शेरवानी जमा को करती चश्मा लगा हुआ है जाता था। करके सारी हुआ था, 24-25 साल की मेरी उम्र थी, हमारा इब्राहिम से जिसका हाथ में मेरे से मैं इस वक्त नागपुर आया, मेरे पूरे मस्जिद में बरेली शरीफ से नागपुर में काम अजिया है, वहाँ पर मुदरिस बनाते ले गए, लेकिन उम्र कम थी, पढ़ने वाले मेरी उम्र से ज्यादा, इसलिए वहाँ पे मुफ्ती साहब ने मुझे शांति भेज दिया। 2 साल वहाँ हराया, जब वहाँ पहुँचा तो 2-4 महीने के बाद कुछ लोग आए तन्हान कालरी है जो कोयला वहाँ से निकलता है, जहाँ तीर का गाँव है वहाँ मिलाद रखा गया है, आपको तकलीफ के लिए वहाँ चलाया गया। मैंने भाई तीर का गाँव है तो मुझे जरा इन लोगों से एलर्जी है आजकल के तीरों से, इसलिए किसी और मौलाना से ले गया। उन्होंने कहा नहीं आप ही की तकलीर होगी। मैंने कहा चलो गया, तो इससे छोटा सा कमरा था, एक साथ पर क्लास मतलब पर टेप लगाए, हाथ में फोन वाली घड़ी सोने की चेन और सामने लाइटर और पाँच का सत्संग सिगरे उसके ऊपर लाइटर रखा हुआ है और तीन साथ भी लगाकर बिल्कुल स्टाइल है। मैंने उन लोगों से पूछा भाई बापू कहाँ है? हाँ बापू बोलते हीरो लेकिन भोजन बहुत खूबसूरत लग रहा था। माशा अल्लाह सुनते हैं पूरा सिक्का आँख बड़ी बड़ी देखते तो आदमी उसका सुबह हो जाए, इतना खूबसूरत है और क्योंकि हाई टेक नहीं जाऊँगा भाई बच्चों को मिल नहीं मैंने चलो मिल देता हूँ बस अंदर दाखिल हुआ तो आ भाई हूँ मेरा तो चंदर हाई हो गया मौलाना भी नहीं देगा मैं नहीं देगा। फिर मैं गया सलाम किया बैठ गया अब सामने प्लेट उसने दीवार को देखा उसके हाथ मार तो पहले काजू निकाल के एक मिट्टी रख फिर हाथ मारा बादाम रख फिर हाथ मारा तो किशमिश चलो फिर भी बोले लो नाश्ता करो। मैं तो पहले गर्म हो चुका था। मैंने कहा कि मैं चोरी का माल नहीं था वो गर्म हो गया तो फिर समझते चोरी का माल समझते मैंने तो पैसे तो दिए नहीं मनाए कहा बगैर पैसे के उनकी इजाजत के बगैर लेके आ गए उसी का नाम है डेटिनेशन चोरी का। पैसे तो आपने दिए नहीं चोरी से अपने मस्जिद से मंगवा लिया किसी भी दुकान से चोरा लेके ला कर रखा नहीं था ये कह करके मैं रस्ते में उठ गया। ये शरीयत बता रही है मुझे उठ गया वहाँ कुछ लोग अच्छे पढ़े लिखे भी दो चार आदमी थे उन पर मेरी बात का असर हुआ कि मौलाना से बात करूँ चोरी का नाम तो हिजरत ने अच्छे से बुलाया। मैं बाहर निकल गया तो मेरे पीछे एक साहब भी आए कहने लगे मौलाना रुको पहले मौलवी बोल रहे थे अभी अच्छी तुम ही अभी तो बोलते मौलाना रुको। मैंने पीछे मुड़ के देखा यहाँ एक नीम का दरख्त था गुजराती में उसको नीमड़ा बोलते उसकी शाखा ऐसी झुकी हुई ये बापू जमात आए और उसकी सांस पकड़ करके यूँ हिलाने लगे कि आप यकीन जाने चेहरे और लड्डू गिर गए घर में से आई मुझे तो पसीना आ गया या अल्लाह मैं अपने को कैसे बचाऊं तो शादी के और मेरे को चेहरे निकाल जाए। अब ये हमारी फैमिली का क्या है हमने उनको कहने हदीस करके समझाने को कोई मानेगा। मैंने कहा अपनी खैर है कि चलो मैंने उनसे कहा भाई मेरा इससे झगड़ा हो जाएगा मुझे वहाँ से लाए नहीं करके। उन लोगों ने भी देखा कि ये मेल भी बहुत कड़वा लग रहा है हमारे कहने से नहीं मानेगा गाड़ी में बिठाया और खोल करके चलो जाने लगे तो मैंने कहा सुनो एक बात ये पक्का चोर है तुमको ठगेगा ढग है और इससे होशियार है और लिख लो अगर लिखना है तो आज का उसके पास तुमसे थक के जाएगा चले जाएगी भेजते रहते तुम्हारे तीन चार का हिसाब का भेजा। पाँच दिन के बाद वो लोग आए थे सही कहते मेरे हजरत जो आपने कहा था बिल्कुल वैसे हुआ मैं क्या हूँ तो मेरे सबसे दस बारह आदमी जो मेरा मेन मेन थे सबसे कहा देखो तुम्हारे पास कुछ सोना रखा होगा तो देखा बोले जितना सोना है सब ला दो कल आना बदल देते जाना। किसी को 6 बजे का टाइम, किसी को 6:30 बजे, किसी को 7 बजे, किसी को 8 बजे, किसी को 9 बजे, सबको टाइम दे दिया था। इसी टाइम में किसके से अपना बदल सोना लेकर करेगा और खबरदार किसी से कहना नहीं। और उस दिन रात को उसने क्या ध्यान किया, बोले आज मेरा खास किल्ला वजीफा पढ़ने का दिन है, इसलिए मेरे कमरे से एक बजे कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई चहल पहल नहीं आनी चाहिए। मैं 12 बजे अपना वजीफा शुरू करूंगा, इससे पहले वो पूरा जो एरिया खाली हो जाएगा। तो सब जमीजत मेरे से बाहर से चेहरा गिर रहा है, तो इससे पहुंचे बाद और कौन होगा, हो गया उसका मामला। अब 6 बजे वाला है, एक 6:30 बजे वाला है, एक 7 बजे वाला है, 8 बजे वाला है, 9 बजे, और दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। सब यहाँ जमा हो गए धीरे सोने वाले
डबल
डबल वाले, तो वो बोलता है आप जाता है फिर नहीं क्या रहा थे। अरे हाँ मजीद जो बुलाया था सब क्यों बुलाया था, जरा तो माता समझ रहा है, मैं सोना ला दे दिया था 5 तोला, अरे बोले 10 तोला मैं लाया था, वो बोले 2 तोला मैं लाया था। तो कभी ने हुआ किया तो 2.5 किलो सोना उसका हुआ। फिर सदन में जाकर दरवाजे को धक्का दिया, न बाबा है न कुछ दोस्त है, सब लाए सब लेके गए ले गए। फिर वो मेरे पास आए, बोले ऐसा ऐसा हुआ जो आपने कहा था वो बिल्कुल सही हुआ। मैंने कहा जब बेवकूफो किसी भी दावा का मानना है तो पहले देखना शरीयत के मुताबिक है कि मैंने ये अपना तजर्बा देखा। कल बताया था मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस जहलवी रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा, ये मेरे साथ खुद गुजरा, ये इंसान आज सिर्फ दुनिया की लालच में फंसता है, दीन की लालच पैदा करे और दीन की लालच में शरीयत है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इन्नल लजीना कालू रब्बना अल्लाह थुम्मा इस्तकामू फतनज्जलु अलैहिमुल मलाइकातु। जो दीन पर कायम हो जाता है अल्लाह ताला फरमाता है रोजाना उसके पास फरिश्ते आते जाते हैं, फतनज्जलु अलैहिमुल मलाइकातु। हम आए ना ऐसे अल्लाह वालों के पास, रब फरमाता अगर इंसान छोड़ देता है उन्हें इसकी परवाह नहीं होती, कतन जले अलैहिमुल मलाइका, हमेशा फरिश्ते आसमान से उसके पास आते हैं और कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तूअदून। ऐ अल्लाह के बंदे किसी से डरना मत, किसी से खौफ मत खाना, हम और अल्लाह की जन्नत की बशारत अभी सुन लो जीते जी जिसका तुमसे वादा किया है। और वो फरिश्ते कहते हैं नहने औलियाए तुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरत, और है अल्लाह के बंदे और शरीयत के मानने वाले तुम, हम दुनिया में भी तेरे दोस्त रहेंगे और जब कब्र से उठेगा तब भी हम तुम्हारे दोस्त रहेंगे। फरिश्ते अपनी दोस्ती का ऐलान करते हैं और फिर कहते हैं वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दउन, और क़यामत में जब उठोगे तो तुम्हारी शान ये होगी जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी खैर अल्लाह पूरा कर लेगा। हम वलियों की बारगाह में क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं वैसे पाक जनाबे बगदादी करीम सख्ती दाना कह लो ये चाह लें साहिश कर लें ये नदी बसरत बच्चा जाए अल्लाह तला भक्के जाएगी अंको से तुम, जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी फौरन वो पूरी की जाएगी। और वलकुम फीहा मा तद्दउन नुज़ुलन मिन ग़फूरिर रहीम, और ये अल्लाह वालों की शान ये है कि जन्नत में अल्लाह उनकी मेहमानी का इंतजाम करेगा। मामूली बात नहीं, मेजबान वैसे खाजा होंगे सैनी शक्ति या जुनैद होंगे, इब्राहिम खल्लास होंगे, इमाम अहमद बिन हंबल होंगे, ये औलियाए कुरान अल्लाह के मेहमान होंगे और अल्लाह मेजबान होगा हमेशा। ये कुरान फरमाता नज़लन मिन ग़फ़ूरिर रहीम, उनको ये दस्तरखान भी पाया जाएगा। और एक सफारत सुन लो, फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक है मेहमान और एक है कुफेली। कुफेली इसको कहते हैं कि जिसको दावत दी गई है वो मेहमान कहलाता है, असली है, और जिसको दावत नहीं दी गई है वो मेहमान का खादिम बन करके गया है। उसको दावत नहीं दी, इसको कहते हैं कुफेली। मेहमान के कुफेल में वो आया है, दावत नहीं मिली है। कुफेली का मकाम यह है मेरे दोस्त कि जहाँ मेहमान बैठता है मेजबान उसको खादिम और कुफेली को भी वही दिखाता। अगर मेहमान को कुफेली और खादिम को मेजबान बाहर निकाल दे, देता एक कर दे, तो मेहमान जो है खाना उसको अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग यहाँ आए हैं कुफेली बनकर, मेहमान तो ये लोग हैं अल्लाह के, और जन्नत में जब उनके लिए दस्तरखान बिछाया जाएगा, खुदा की कसम हम जन्नत के दरवाजे पर झाँकेंगे, मेरे बैठे पास दस्तरखान पर बैठे हैं, देख कर कहेंगे मेरे कुफेली या तू भी बैठ जा। ये है कुफेली का मकान, इसलिए हम लोग बरकत की ठोकर खाते हैं। जिनको कुफेली नहीं बनना है उन बदअकीदों को छोड़ो, तुम तो जहाँ अल्लाह वालों का दरबार देखो वहाँ पहुँच जाओ। हम उनके कुफेली, हम उनके खादिम, हम उनके चाहने वाले। ये चाहत वो है कि हुजूर फरमाते हैं कि हश्र में जिसको जिसको मोहब्बत होगी उसी के साथ अल्लाह उठेगा। जिसको मोहब्बत करोगे उसी के साथ उठोगे, यजीद से मोहब्बत करो तो यजीदी बन के उठोगे, हसैन से मोहब्बत करो तो हसैनी बन के उठोगे, वहाबियों से दोस्ती करो तो उनके साथ होगे, और अहले सुन्नत आला हजरत के साथ दोस्ती करो तो उनके साथ होगे। ये हदीसे पाक है और ये कोई मजाक नहीं है, ये वो मसलक है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके मानने वाले न यहाँ रुकवा होंगे न यहाँ रुकवा होंगे। अल्लाह ताला हम सबको होके पाक की बारगाह का कुफेली बनाए और विनोद गंगाजी का खादिम बनाए, और यहाँ से हम यही जज्बा लेकर जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अला खैर खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिल्लाह। Thank you.
Yeah.